તારીખ 1/1/1999 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 460 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 799
ડાયરીમાં 122મો બોલ ચાલે છે. સત્સંગ નિષ્ફળ થવાના ચાર કારણો લીધા છે. એમાં ત્રણ કારણોની ચર્ચા ચાલી ગઈ. ચોથું કારણ છે ઇન્દ્રિય વિષયની અપેક્ષા. હા, જીવ કો બાહ્ય પદાર્થ મેં ત્યારે પંચેન્દ્રિય કે વિષયો મેં સુખ બુદ્ધિ હોને કે કારણ છે ઉસ વિષયો કી અપેક્ષા રાહ કરતી હૈ. જીવકો ચાહીએ, હમકો ચાહીએ. ક્યોં ચાહીએ? કે સુખ બુદ્ધિ હૈ ઇસલિયે. તો લિખતે હૈ, જડ કી અવસ્થા મેં પરમાણુ કી અવસ્થા મેં સુખ બુદ્ધિ ઓર રસ બુદ્ધિ રસ કા અભિપ્રાય, હમકો રસ આતા હૈ, અચ્છા લગતા હૈ, વો ભી અભિપ્રાય હો જાતા હૈ. ઇસલિયે ઉસકી મહિમા, ઉસકી મહત્તા હોને છે ઉસ પે ઉસકી અપેક્ષા રાહ કરતી હૈ. ઓર ઉસી વક્ત જીવ અપના નિજ સુખ સ્વભાવ કો ઓર અપની મહત્તા કો ભૂલતા હૈ. ઓર સ્વભાવ કી ઉસ સહેજ ઉપેક્ષા હો જાતી હૈ. હવે અહીંયા પેલી વાતને જોડવી છે. હું જ્ઞાન માત્ર છું એવી જાગૃતિપૂર્વક ઇન્દ્રિય વિષયનો જ્ઞાનમાં એટલે સ્વમાં પોતામાં અભાવ ભાષ્યમાન થતાં તેની અપેક્ષા વૃત્તિ અથવા અપેક્ષા બુદ્ધિ થતી નથી. મેં જ્ઞાન માત્ર હું એસી સ્વરૂપ સાવધાની મેં, યાની સ્વરૂપ કી જાગૃતિ મેં, બાહ્ય પદાર્થ મેં ઉસકા અભાવ દિખતા હૈ ઓર બાહ્ય પદાર્થ મેં સુખ રહિતપણા ભી દિખતા હૈ. વો તો જડ હૈ, ઉસમે સુખ નહીં હૈ. જબ ઉસમે સુખ ભી નહીં દિખતા ઓર અપને મેં ઉસકા અભાવ દિખતા હૈ તો ઉસકી અપેક્ષા વૃત્તિ છૂટ જાતી હૈ. યે ઇસકા સહી ઇલાજ હૈ. પંચેન્દ્રિયો કે વિષય મેં સુખ બુદ્ધિ બહોત ગાઢ હૈ જીવ કો. કિતની ગાઢ હૈ વો તો જિસકો અવલોકન અચ્છા હુએ ઉસકો હી પતા ચલતા હૈ. બહોત ગાઢ હૈ. ઉસકો અવલોકન સે ઇસકા રસ તોડના, ઉસકા અભિપ્રાય કો ઢીલા કરના ઓર મેં જ્ઞાન માત્ર હું ऐसा स्वयं की जागृति की जागृति भाव का प्रैक्टिस का पुरुषार्थ बार बार होना ही एकमात्र इसका इलाज है, वरना ये सुख के लिए जो परिणाम खींचता है वो खींचे बिना रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत गाढ़ हुआ है और अभिप्राय भी पड़ा है। और इंद्रिय विषयों में की अपेक्षा वृत्ति की एक परिणति बन जाती है, वो परिणति सत्संग में प्राप्त बोध है उनको असर होने नहीं देती। सत्संग के असर क्यों नहीं आते कि जो अपेक्षा वृत्ति का जो मोह है, मोह सहित की जो अपेक्षा वृत्ति है उसकी जो परिणति है वो परिणति बोध के असर होने नहीं देती, इसलिए सत्संग सफल नहीं हो पाता। ही भीतर में सत्संग निष्फल होने का सही कारण है, असली कारण है। क्योंकि इंद्रिय के विषयों में जो रस है उसमें आत्मरस का, ज्ञान रस का अभाव है, चैतन्य रस का अभाव है, और वो रस की परिणति चलती रहती है। और ज्ञान रस में, यानी मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसे रस वाले जागृति के परिणाम में इंद्रिय विषय का रस का सहज अभाव होता रहता है। बस ये परस्पर उल्टी सुलटी प्रैक्टिस है। मुद्दे की बात वो है कि सत्संग सफल क्यों नहीं होता, कि उससे जितने भी कारण हैं इसमें बुद्धि अपेक्षा वृत्ति, बुद्धि पूर्वक की अपेक्षा वृत्ति तो सत्संग को नहीं होने देता, सत्संग को निष्फल कर देता। इसलिए स्वयं की जागृति से उत्पन्न जो ज्ञान रस है उसे उसमें बाह्य विषय के रस का अभाव सहज होता है, और वही सत्संग का प्रत्यक्ष फल है, यही सत्संग का रिजल्ट है। यहाँ से एक बात और लिया है, वो 609 पत्र में, सत्पुरुष के प्रति अत्यंत भक्ति अत्यंत भक्ति सत्पुरुष के प्रति अत्यंत भक्ति सहित, भक्ति समेत सत्संग करवा में, सत्संग करने में आता है, तभी सत्पुरुष का बोध परिणाम को प्राप्त होता है। और सत्समागम में भक्ति पूर्वक समर्पण होने से इंद्रियों के प्रति जो वृत्ति है वो सहज शिथिल हो जाती है, करने नहीं पड़ती, सहज शिथिल हो ही जाती है और आत्महित का भाव बलवान हो जाता है। इस प्रकार पर विषय का रस, जड़ संबंधित रस, सत्संग सफल होने में प्रबल अवरोधक यानी प्रतिबंधक कारण है। यह अपूर्व भक्ति का अभाव के विषय में और भी आगे लिखा है। सत्संग दाता एवं ज्ञानी परम पुरुष परमात्मा प्रत्यय अपूर्व भक्ति नो अभाव हुआ थी ऊपर कहेला चारे दोष सहज उत्पन्न थाय छे। स्वच्छंद समाज इंद्रिय विषय की अपेक्षा अने मिथ्या आग्रह ए अपूर्व भक्ति ना अभाव में उत्पन्न थाय छे। एनो अर्थ के अपूर्व भक्ति ना सद्भाव में उत्पन्न थई सकता नथी। ये भक्ति के भाव तो होने चाहिए, अमलीकरण तो बाह्य परिस्थिति अनुसार होगा या नहीं होगा, लेकिन भाव तो भाव है, भाव तो होने ही चाहिए। हाँ नहीं, भक्ति मैंने भक्ति भक्ति में उपकार बुद्धि से टॉप प्रायोरिटी में मुख्यता रहती है। उपकार बुद्धि के कारण जिसको अपूर्व भक्ति होती है वह जीव संसार को तीर जाता है। अतः ज्ञानी का योग, प्रत्यक्ष योग परम हितकारी जान करके परम प्रेम से सर्वार्पण बुद्धि से सभी प्रकार के संयोग को गौण करके उपासना करने योग्य है। और तभी ज्ञानी से प्राप्त बोध परिणत होता है, तभी ज्ञानी से प्राप्त बोध परिणत होता है यानी सत्संग की सफलता होती है। अन्यथा परिणमन होता नहीं, सिर्फ धारणा रह जाती है, ऐसी वस्तु स्थिति है। मैंने बहुत बड़ा फल है अपूर्व भक्ति का, वो बात सही रूप में समझ में आती है तो जीव को सिखाना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। लाभ एक ऐसी चीज है कि जिसके पीछे परिणाम दौड़े बिना रहे नहीं। लाभ लाभ दिखना चाहिए, वास्तव में तो ज्ञानी की पहचान होने पर पात्र जीव को उपरोक्त प्रकार से अपूर्व भक्ति जागृत होती ही है, हुए बिना रहती होती ही है, हुए बिना रहती नहीं। ऐसी भक्ति यह मात्र शुभराग वृद्धि रूप नहीं है, ये भक्ति कोई शुभ राग की वृद्धि होगी ऐसा नहीं लेना चाहिए, मात्र उसको राग के खाते में नहीं खताना चाहिए, परंतु प्रकट सत का सही मूल्यांकन है। और मूल्यांकन हमेशा राग ज्ञान में होता है, राग में नहीं। विवेक है, परम विवेक है, ये भूमिकानो परम विवेक है, અને એ ખરું મૂલ્યાંકન છે, ખરી કિંમત આવી છે એને। જે મોહને અથવા આવા આવા પ્રકારના દોષને તોડવામાં પરસેવો ઉતરી જાય તો ન તૂટે, એ અપૂર્વ ભક્તિથી સહજ માત્રમાં તૂટે તો એ કેટલું મોટું બળવાન સાધન ગણવું। ચારે પડખેથી એનું મૂલ્યાંકન અને એનું ફળ કેટલું, કે આખો સંસાર તરી જાય છે, એનું મૂલ્યાંકન બરાબર આવવું જોઈએ। પરંતુ એ પ્રગટ સત્કા સહી મૂલ્યાંકન હે જિસ કારણ સે દર્શન મોહ दृढ़ हो जाए, ऐसे दोष उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसे दोष उत्पन्न ही नहीं होते। जो भी है दर्शन में वो गल गल जाएगा, उसकी ताकत टूट जाएगी और नया दर्शन मोह के परिणाम तीव्र परिणाम होगा ही नहीं। ऐसे दर्शन मोह के परिणाम उत्पन्न होते ही नहीं, परंतु दर्शन मोह गल जाता है ऐसी परिणाम की स्थिति होती है। यह सत्संग में निहित महान रहस्य है। प्रत्यक्ष योग का रहस्य क्या, के दर्शन मोह को गाल देता है वो। ऐसा सत्संग योग साधारण दिखता है, ऐसा साधारण नहीं है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। कितना मूल्य है, लाखों का, करोड़ों, अरबों का, कितना है देखो। घर के एक सदस्य की शारीरिक स्वास्थ्य की परिस्थिति सीरियस होती है तो क्या होता है देख लो। कि सभी प्रकार के मेजर एक्शन लिया जाता है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। क्यों? कि कुछ भी हो सकता है। अब हमारे खुद के अनंत जन्म मरण का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसका मूल्यांकन कितना। अतः सभी ज्ञानियों ने स्वयं के अनुभव से ग्रंथ ग्रंथों में ठाम ठाम सत्संग का महत्व प्रदर्शित किया है, यही कारण है। इसलिए इस विषय में तर्क वितर्क कुतर्क विवाद शंका आशंका करने योग्य नहीं है। एक अंश आता थी पूर्ण काम का सुधी बहु अनुभव थी लखेल से। सत्संग सत्संग मूल्य भास हो रही है। गमे तेवी प्रतिकूल परिस्थिति में पण सत्संग गौण न थवो जोईए, एटलू मूल्यांकन होवू जोईए। तो अनुकूल परिस्थिति में गौण करे जीव तो मने पूछी के मारे मुक्त थवू छे, ए वात मानी शकवा जेवी नथी। અંતકરણની શુદ્ધિ નથી ત્યાં, અંતકરણ મલિન છે, શુદ્ધ અંતકરણથી જેને મુક્ત થવું છે એ તો કોઈ પણ ભોગે સત્સંગને ઉપાસે છે, કોઈ પણ ભોગે સત્સંગને ઉપાસે જ कोई बांध ही सके नहीं। स्वयं को छूटना है जगत में, इसको कोई बांधने वाला है ही नहीं। और जिसको स्वयं को बंधाना है उसको छुड़ाने वाला कोई जगत में नहीं, कोई ऐसा समर्थ ज्ञानी नहीं, कोई समर्थ गुरु नहीं, कोई तीर्थंकर भी नहीं जो उनको छुड़ा सके, क्योंकि वो भी उल्टी ताकत पूरी लगाता है, अनंती है वो भाई, वो भी उल्टी अनंती है। इस तरह से ये 122 नंबर का बोल है वो वहां इधर समाप्त होता है। चलते हुए विषय में अपन प्रभुदेव का पत्र लेंगे, कितना કુંવરજીભાઈ તથા ઉગરી બેન કરો, ઉગરી બેન એટલે જુઠાભાઈના ધર્મપત્ની હતા, કલોલમાં એ લોકોને મિલ હતી, અમદાવાદમાં કલોલમાં, પછી ભાવનગરમાં જાંગીર વકીલ મિલ કરી, એ બધો એક જ ગ્રુપ છે। શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણે અને બાંધેલા એવા કર્મોનું ફળ જાણે, સમ્યક પ્રકારે અહિયાસવા યોગ્ય છે। ઘરગથ્થુ શબ્દ વાપરો છે, શારીરિક વેદના રોગ કે કારણ સે હોતી હૈ, वो देह का धर्म है। क्या है वो? तो देह का धर्म है, या तो साता होगी या तो असाता होगी। शारीरिक वेदना ने देह नो धर्म जाणवो अने पोते बांधेला कर्म नो फल जाणवो, અને એમ જાણીને સમ્યક પ્રકારે એટલે આત્માભિમુખ થઈને, સમ્યક પ્રકાર છે દિશા સૂચક છે, આત્માને મુખ્ય કરીને, આત્માની ભિન્નતાને અસંગતાને મુખ્ય કરીને એ વેદનાને અહ્યાસવી એટલે સહન કરવી, શાંત ભાવે સહન કરવી, એનું નામ અહ્યાસવું. દુઃખી થઈને નહીં, શાંત ભાવથી સહન કરવું. શરીર ધર્મ છે એટલે આત્મામાં થતું નથી, પણ આ આત્મા પોતે દેહાત્મ બુદ્ધિએ અથવા ઉદય પ્રત્યે જોડાણ થવાને લીધે જે આકુલતા ઉત્પન્ન અનુભવે છે એ જીવનો દોષ છે, જીવનો એ દોષ છે. ખરેખર તો સમ્યક જ્ઞાનમાં તો વેદના જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે અને પરસત્તા શરીરના પૂતગળોનું પરિણમન છે. એ પરિણમન આત્મામાં થતું નથી, આત્મામાં જણાય છે. નિકટતા, સમીપતા, અતિ નિકટતા હોવાને લીધે આત્મામાં એ જણાય છે. તેથી તે માત્ર જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે. જો એવી ભૂમિકા હોય મુમુક્ષુને પણ, તો વેદનાને કાળે તે જ્ઞાનમાં સાવધાન થાય. જ્ઞાનમાં શું થાય છે? જ્ઞાનની સત્તામાં, જ્ઞાનની હયાતીમાં, મોજૂદગીમાં, એટલે કે મારી મોજૂદગીમાં એ પરિણમન નથી. પૂતગળોનું પરિણમન જણાવવા યોગ્ય છે, પણ એ પરિણમન મારી સત્તામાં પ્રવેશ પામતો નથી. તો એ વેદના ગમે તેવી તીવ્ર હોય તો પણ અસહ્ય ન લાગે. ભિન્ન પડવાનો પુરુષાર્થ જોઈએ. વાત ચલતી હૈ કે શરીર મેં પીડા હોતી હૈ રોગ કે કારણ સે, નહીં ચાહતે હુએ ભી જીવ કો ઇસ પીડા કા દુઃખ ભોગના પડતા હૈ, લાખ નહીં ચાહે તો ભી, और इसका कोई जगत में इलाज नहीं है, इसका जगत में कोई इलाज नहीं है. एक हमारे अध्यात्म विद्या में जिनेंद्र परमात्मा ने इसका इलाज हमको दिया है. ये भगवान की बहुत दी हुई बड़ी देन है हमारे पास. હા, ગુજરાતીમાં હમકો બોલ લિખા એક જગ્યા એ જિનેન્દ્ર પરમાત્માની પ્રદત્ત નિધિ છે. પ્રદત્ત મેને દી હુઈ, નિધિ મેને ખજાના, એક બહુ બડા ખજાના હમકો દિયા હૈ ઉન્હોને, और उनके हम उनके वारिस भी है, वारिसदार हैं। और ये निधि अभी तक लावारिस नहीं हुई है। तुम इसको क्यों नहीं भोगे? हम हकदार है, दावेदार है, हमारा हक है उसको भोगने का। और चमत्कारिक बात वो है कि कितनी भी वेदना की पीड़ा हो, हमें दुख नहीं होता है। हम जान सकते हैं कि ज्यादा है या कम है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, उसको मालूम पड़ती है, लेकिन इसका दुख हमको भोगना नहीं पड़ता है। अगर हम सही इलाज करें तो, और वो इलाज ज्ञानी इधर बताते हैं। सम्यक प्रकार से मैंने आत्माभिमुख होकर के, आत्मस्वरूप को मुख्य कर करके, या अपने ज्ञान तत्व को अनुभव, वो इलाज है। जगत का दूसरा कोई इलाज नहीं है। पेन किलर भी फेल होती है, वेदना भोगनी पड़ती है, तीव्र होती है। बहुभाग शारीरिक वेदना का बल विशेष चलता हो, बहुत तीव्र वेदना हो, तब ऊपर कहा है ऐसा जो सम्यक प्रकार रूढ़ा मैंने पात्र जीव को भी क्या बिठाई, रूढ़ा मैंने कौन सा है, उत्तम जीव को, पात्र जीव को भी स्थिर रहने में कठिन पड़ता है, उसको परिश्रम लगता है, बहुत तीव्र वेदना होती है, तो उसके सामने पुरुषार्थ भी तीव्र चाहिए। मंद पुरुषार्थ वाले का काम नहीं चलेगा, वो तो विवेदना में दुखी हो ही जाएगा। फिर भी हृदय में बारंबार इस बात का विचार करने पर और आत्मा को नित्य अच्छेद्य अभेद्य जरा मरण आदि धर्म थी रहित भाने से, भावना में भाने से, और कुछ अंश में यह सम्यक प्रकार का निश्चय आता है। क्या लिया कि ऐसी कठिन परिस्थिति में हृदय में मैंने भीतर में ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर के विकल्प काम में नहीं आएंगे, जो सिर्फ रटन रूप है, कोरा है, वो काम में नहीं आएगा। अंतर में से, भीतर में से, भावना में आकर के आत्मा को भावना में लेना कि मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अच्छेद्य हूँ, मेरे में किसी का कोई छेदन भेदन हो ही नहीं सकता, अच्छेद्य और अभेद्य हूँ, और मरण आदि और बाधा आदि धर्म से रहित हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला पदार्थ हूँ, मेरी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, शाश्वत पदार्थ हूँ, नित्य मैंने शाश्वत, हमेशा जिंदा रहने वाला, और अपनी ताकत से जिंदा रहने वाला, किसी दूसरे के आधार से मैं जिंदा रहने वाला नहीं। दवाई मिलेगी तो मैं जिंदा रह जाऊंगा, ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी तो मैं जिंदा रह जाऊंगा, वो बात नहीं है। मैं तो हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ। शायद शरीर का योग छूट सकता है लेकिन मेरी जिंदगी नहीं छूटती उसमें। कहीं और जगह मेरा जीवन चालू रहेगा, पहले कहीं और जगह चालू था, अभी इस जगह है। हो सकता है आयुष्य पूर्ण होने से कहीं और जगह वो चालू रह सकता है, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये स्वरूप के आधार बुद्धि में मृत्यु का भय, मृत्यु का दुख या मृत्यु जैसी कोई चीज ही मालूम नहीं पड़ती। जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे देह बदलते हैं, कपड़े तो बदलते ही हैं वैसे देह बदला जाता है, शरीर भी एक कपड़ा है और क्या है। लेकिन जीव इसमें मृत्यु की कल्पना कर लेता है तो बहुत भय होता है, बहुत दुख होता है, बेहद दुख और बेहद भय हो जाता है। तो विशुद्धि आ जाती है, क्या हो जाता है, बेशुद्ध हो जाता है, सुत्सान नहीं रहती, इतना दुख हो जाता है सेकंडों में। लेकिन भाने से, अच्छी तरह भाने से ऐसा नहीं होता, दुख नहीं होता। मृत्यु का दुख नहीं होता तो फिर कोई पीड़ा का भी दुख नहीं होता। जब मृत्यु का दुख नहीं होता तो फिर पीड़ा का दुख होने का सवाल है। और इस प्रकार की भावना से सम्यक प्रकार का पुरुषार्थ कैसा होता है उसका निश्चय, निश्चय मैंने भाव भाषण, या निश्चय का अर्थ होता है भाव भाषण आता है कि ज्ञानियों का सम्यक पुरुषार्थ का भाव कैसा होता है, उसका भाव भाषण आने लगता है। अगर जीव वेदना के काल में पुरुषार्थ करता है या अपने स्वरूप की भावना में आता है तो उनको पुरुषार्थ कैसा होता है उसका भाव भाषण आता है। बात रही प्रैक्टिकल साइड, ऐसी भावना में आना चाहिए। महान पुरुष ने अय्यास से ला, अय्यास का क्या हिंदी किया है, सहन किया हुआ, शांति से सहन करते हैं। ज्ञानियों को, महान पुरुषों को भी बड़े बड़े रोग आते हैं, वो शांति से उसको बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। ऐसे उपसर्ग, उनको उपसर्ग कोई करते हैं, उपसर्ग मैंने कोई मनुष्य प्रतिकूलता देता है, कोई देव देता है या कोई तिर्यंश की और प्रतिकूलता होती है उसको कहते हैं उपसर्ग। देव मनुष्य तिर्यंश कृत प्रतिकूलता को उपसर्ग बोला जाता है और कुदरती प्रतिकूलता को परिश्रम बोला जाता है। तो महान पुरुषों को भी उपसर्ग परिश्रम होता है, वो शांति से सहन करते हैं। ऐसे प्रसंगों की जीव में स्मरण करना, कहाँ स्मरण करना, जीव में स्मरण करना, अपने आप को इन्वॉल्व करना, जैसे इलिया में ऊपर इन्हीं वाला दृष्टांत ले, भाई मेरी मेरी लड़की को ऐसा होता, ये मर जाती तो मुझे उसका तबीयत बिगड़ता, फिर मर जाती, फिर उसको ले जाते, तो मेरे परिणाम कैसे चलते। तो जीव में मैंने अपने में लेना है, उसको जीव में स्मरण करने की बात है। जीव में स्मरण करके उस विषय में उन ज्ञानियों का, महापुरुषों का जो अखंड निश्चय यानी बलवान परिणमन, अखंड परिणमन, खंडित नहीं हुआ है ऐसा परिणमन, उनके अखंड परिणमन को बार बार हृदय में स्थिर करने योग्य जानने से, स्मरण करके बार बार हृदय में स्थिर करना, चलित हो जाए ऐसा नहीं, उसको हृदय में स्थिर करना, भीतर में स्थिर करना, श्रद्धा ज्ञान में स्थिर करने योग्य जान करके, जानने से जीव को वह सम्यक परिणाम फलीभूत होता है यानी सफल होता है। जैसे ये ठंड बहुत हुई और सर्दी लग गई तो वो कुदरती परीक्षा है, वो किसी ने किया नहीं कि देव मनुष्य तिरस्कृत नहीं है, तो कुदरत है। या कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई ये तूफान होता है, मकान गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, भूकंप होता है, अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें प्रतिकूलता हो जाती है, तो सब परीक्षा है। हाँ, पूर्व प्रारब्ध रोग होता है वो भी परीक्षा है। तो ज्ञानी पुरुषों को, महान पुरुषों को भी ऐसा होता है, उस वक्त उनका जो अखंड परिणमन है, शांत परिणमन है पुरुषार्थ का, वो विचलित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, ऐसे परिणमन को अपने भीतर में स्थिर करना सिर्फ स्मरण में लेना नहीं, कैसे भाव लिखे हैं, हृदय में स्थिर करने योग्य जानने से जीव को वह सम्यक परिणाम फलीभूत होता है। संक्षिप्त में बात यह हुई कि ऐसे महापुरुष के चरित्रों को हृदयंगम करना, हृदय में स्थिर करना, इसके पुरुषार्थ के पराक्रम को बहुत भक्ति से, उसकी महत्ता से उसको देखना, बहुत बहुमान आना चाहिए इस विषय में। तो देखो वो कैसे रहे, रामचंद्र जी वन में कैसे रहे, 14-14 साल तक रहे, एक झोंपड़ी पर्णकुटी बांध करके रह जाते थे, रहने वाले हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, उस भव में मुक्ति में जाने वाले थे, और सीता जी है वो भी एक राजकन्या थी, राजपुत्री थी, और अयोध्या की राजरानी थी, कोई मामूली औरत नहीं थी, इसका वर्णन किया है शास्त्र में, पद्म पुराण में इतनी सुंदरता, इतनी कोमलता, इतना इतना लिया है, अंग अंग का वर्णन किया है आचार्यों ने, रविशरण आचार्य हैं लिखने वाले। फिर वो जंगल में रहते हैं जहाँ सर्प आते हैं, बिच्छू आते हैं, कान खजूरा आते हैं, हम तो एक छिपकली को घर में देखते ही भड़कने लग जाएंगे। होती है ना वो छिपकली, बोलते क्या बोलते आप, छिपकली बोलते हैं ना, उसको देखते ही भगते हैं। वहाँ तो जंगल में कैसे रहते होंगे, उसमें भी बारिश बरसात आते हैं, ठंड आती है, सब कुछ, गर्मी होती है, सब कुछ होता है। एक दिन, दो दिन, चार पाँच 15 दिन नहीं, 14-14 साल रहे वो राजमहल में रहने वाले, कैसे रहे होंगे। ज्ञानी थे, रामचंद्र जी भी ज्ञानी थे, सीता जी भी ज्ञानी थे, शांत चित्त से बराबर वो सहन करते हैं। ऐसे ज्ञानियों का, महापुरुषों का पुरुषार्थ के प्रति हमारा बहुत बहुत बहुमान होना चाहिए, तभी तो कुछ बल आएगा। बहुमान होगा तो बल आएगा, वरना परिणमन में बल आएगा कहाँ से। जब भीतर से नहीं आता है तो बाहर से भी बल मिले, ऐसी बहुत सी बातें हैं। वो हो सकता है इसके चरित्र को हृदय में लेने से, हृदय में लेने में बहुत बहुमान से, हाँ, उसको देखने से परिणमन में बल आ जाता है। ये देखो हमको क्या है, कुछ नहीं है हमको तो, कुछ इसके बराबरी में कोई प्रतिकूलता है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी उनकी साधना अचलित रही, वो विचलित नहीं हुए, तो हमको तो बहुत अनुकूलता है, फिर भी कोई ठिकाना नहीं है परिणमन का, क्या बात है। बहुत मंथन चलना चाहिए। ऐसी भावना भाने जाएगी हमको, हमारा भी ऐसा पुरुषार्थ हो कि कड़ी से कड़ी प्रतिकूलता आए तो भी हम मार्ग से विचलित नहीं हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो फिर मामूली प्रसंग में कुछ लगेगा ही नहीं, वरना गड़बड़ हुए बिना रहेगी नहीं। हाँ, अकेले छोड़ दिया था वो, तो साथ में रामचंद्र जी थे, दोबारा तो अकेले छोड़ दिया था। फिर भी वो दीनता में नहीं आई, डरी भी नहीं, भयवान भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया था, और भयंकर जंगल में छोड़ दिया था, कहीं कोई मिले नहीं। आप तो पुरुष होते भी एक दिन रात को भी निकलना, तारंगा गए थे ना, वहाँ ठंड में कोई, उनको कोई कामल नहीं था कि चलो ठंडी पड़ेगी तो कहाँ उड़ेंगे, क्या उड़ेंगे, कोई सामान नहीं दिया था साथ में, देखो निराधार हालत में छोड़ दिया था। कैसे रामचंद्र जी के कठोर परिणाम होंगे कि अपनी सुंदर पत्नी को निराधार हालत में भयंकर जंगल में छोड़ दिया, और इसका क्या होगा इसका विकल्प नहीं किया। अपने तो नहीं था, बस एक विकल्प आया, बात खत्म, आगे पीछे कोई लगाव नहीं है।
राग
सांसारिक राग नहीं था, ज्ञानी थे ना, वो भी ज्ञानी थे, और उसको विश्वास नहीं गवाया, रामचंद्र जी के प्रति अविश्वास नहीं आया कि उसको कुछ प्रेम में कमी हुई होगी ना, तब तो ऐसा कदम उठाया होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, पूर्ण प्रतीति थी कि उसके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है उतना कम उतना ही है, कोई अंश में फर्क नहीं है। अब इसको कोई विकल्प आ गया, महापुरुष है, कोई ऐसा विकल्प आ गया, हमारा कोई प्रारब्ध ही ऐसा ही है, प्रारब्ध तो हमारा ऐसा है, उनको उनका दोष क्या देखे, मेरे प्रारब्ध में यही होने योग्य था तो हुआ, तो मेरा किया हुआ कर्म है। अब इसका इतिहास मिल रहा है ऐसा कि किस प्रकार से ऐसा बना, क्यों बना, कैसा अपराध किया था, सब मिलता है। अगर जीव ऐसा पुरुषार्थ करता है तो वेदना वेदना के क्षय काल में नाश हो करके फिर से ऐसी वेदना होवे, ऐसा कर्म का बंधन का कारण नहीं होती, वरना नया कर्म बंधन का कारण, नई वेदना आने का कारण वही वेदना बनेगी। हमको ये बात को सही रूप में समझ करके पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तक रखें।